कबीजोम जो है यहाँ नहीं चलता है, खुद यहाँ पर कभी जैसे फेसबुक नहीं चलता है, प्रोग्राम बंद है। आज ये भी वजह हुई, और एक और वजह ये कि यहाँ टाइम डिफरेंस थोड़ा सा 1 घंटे का आगे पीछे, उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ तो माजरा सा, टाइम ज़्यादा गुजर गया है, तो थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि माह मुबारक रमज़ान जो है वो नज़दीक है, उसके एतबार से बहुत सारी तैयारियां मोमिन करनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि माह मुबारक रमज़ान अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है, कि फरमाया कि इस महीने में जितने भी गुनाहगार लोग हों, खताकार हों, खुदा ने ये खल किया है गुनाहगारों के बख्शिश के लिए। अजीब अहादीस हैं कि एक एक रात में हजारों लाखों बल्कि करोड़ों लोग जो है वो जहन्नुम से आजाद हो। तो इंशाल्लाह हमें तैयारी करनी चाहिए। अब किस तरह की तैयारी करें? देखिए, पहले 10 दिन जो है इनका मकसद कुछ और है, पहले से लेकर 10 रमजान, अगर इसमें हमने तैयारी कर ली जो अहादीस में है, तो दूसरे 10 दिन में हम और ज्यादा कामयाब होंगे, और ज्यादा इसे फतुहात कहते हैं, यानी शैतान को शिकस्त देने में जो फतह मिलती है इंसान को। 10 दिन के बाद फिर 10 दिन दूसरे हैं, वो उससे ज्यादा हम उसमें और तवज्जो ज्यादा करनी है। अगर दूसरा अशरा माह मुबारक रमजान का है, अगर मुतवज्जो हुए, कामयाब हुए, तो कुल्लन अपनी तकदीर को बदल सकते हैं, क्योंकि एक लैलतुल कद्र उसमें है, दो उसके बाद में है, और जो आखिरी है 10, वो तो इंतहाई अजीम शान 10 रातें और 10 दिन हैं। ये इसलिए अर्ज करता हूं कि हमें रमजान की अजमत का पता नहीं है, हम आम महीनों की तरह माह मुबारक को समझते हैं, जबकि असहाब जो थे अहल बैत के, यहाँ प्यारे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मानिंद सलमान फारसी, ये 11 महीने कमाते थे माह मुबारक रमजान के लिए, यानी जो जईफ तरीन फकीर तरीन असहाबी होते थे वो 11 महीने पैसे जमा करते थे, ताकि माह मुबारक रमजान में हमें कोई और काम न करना पड़े, फकत और फकत हम इबादत में मशगूल हैं। 11 महीने दुनिया के लिए, 1 महीना खुदा के लिए। मगर अब ऐसा नहीं है, 1 घंटा भी हम दे दें तो बड़ी बात है। आप देखिए, आयमाल जो है ना माह मुबारक रमजान के, इस कदर ज्यादा है, दुआएं इस कदर ज्यादा है कि वाकई अगर इंसान दीगर कामों में मशगूल रहे तो वो सारी चीजें नहीं हो सकती हैं। लिहाजा जैसे पहले दर्स में बताया गया कि औलिया खुदा तो 15 शाबान से तैयारी करते हैं कि खुद को आमादा करें इस अल्लाह के महीने की जियाफत के लिए। मौला इमाम जैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम जब इस माह मुबारक रमजान के चांद को देखते थे, फरमाते थे, अस्सलाम अलैक, सलाम हो तुझ पर है चांद, या ईद उल औलिया, ये चांद जो है औलिया खुदा के लिए ईद है। आए के लिए ईद है कि आप देखिए ना कि एक रात अल्लाह ने ऐसी खल की है, लैलतुल कद्र खैरु मिन अल्फ शहर, जो हजार महीनों से अफजल है। वह हजार महीने का हिसाब लगा लें तो हजार महीना यानी तकरीबन 70 ईयर से ज्यादा बनते हैं, यानी एक साल में अपनी पूरी तकदीर आप बदल सकते हैं, पूरे गुनाहों को मिटा सकते हैं। यानी हो ही नहीं सकता कोई बंदा आए तौबा के लिए अल्लाह उसे बख्श न दे। ये इतनी अजीम शान रात। और फिर जो शब और रोज है माह मुबारक रमजान के, फरमाया कि जो सांस हम ले रहे हैं वो भी तस्बीह बराबर है, मतलब कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं, सांस निकाल रहे हैं वो भी तस्बीह है। अल्लाह अकबर। अब ये कितनी बड़ी नेमत है, जहाँ सांस लेना इबादत है, सांस निकालना इबादत है। मगर वाकई जिस तरह होना चाहिए, माह मुबारक रमजान का इस्तकबाल वो आज नहीं रहा। हमें मारिफत नहीं है कि ये महीना असलन इसलिए कि खुदा नहीं चाहता मेरा एक बंदा भी जहन्नुम में जाए। और जैसे हमारी गुफ्तगू अरबईन थी, बहुत सारे अरबईन जो लोग करना चाहते हैं, मगर सख्त बीमारी से निजात का अरबईन है, या अजीम शान कामयाबी कोई मकसद है उसमें कामयाब होने का, या इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मुलाकात का, वो सारे अरबईन होते हैं मकासिद के लिए। वो 15 शाबान से या 20 शाबान से शुरू होते हैं कि अरबईन में 40 दिन होने चाहिए। तो पूरे साल में ये जो 15 शाबान या 20 शाबान से लेकर माह मुबारक रमजान का महीना है, इसको असलन कंपेयर नहीं किया जा सकता। अब तैयारी पहले अशरे में क्या किया जाए, यानी ये कल्ब के हालात हैं कि अगर दिल आमादा नहीं है तो किस तरह से हम दूसरे अशरे में शब कदर से फैजियाब हो सकेंगे। तो दिल गाफिल है, गुनाहों की गिलादत है, जिस कदर हम दिल को धो सके गुनाहों से, पहले अशरे में गिरिया आहोजारी करें, ताकि दूसरे अशरे में जो असलन एक अजीम शान जो नेमत है लैलतुल कद्र, लैलतुल कद्र में जो अजीम शान नेमत है वो है मुलाकात इमाम जमान अलैहिस्सलाम। आप जो इन्ना अनज़लना इस सूरह पढ़ते हैं, ये पूरा सूरह इमाम जमान अलैहिस्सलाम की शान में है। अगर आप देखें तो इसीलिए फरमाया हर नमाज की पहली रकत में सूरह अलहम्द के बाद इन्ना अनज़लना के पढ़ने का सवाब बहुत ज्यादा है। 114 सूरह है मगर इन्ना अनज़लना का क्यों सवाब ज्यादा है, कि खुदा याद दिलाता है कि तुम्हें जो भी नेमत मिल रही है इमाम जमाना के सदके में मिल रही है। अब इसमें तो काफी तफसील हो जाएगी, मैं सिर्फ इशारा कर दूं। सूरह इन्ना अनज़लना पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अनज़लना फी लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। ये तो लैलतुल क़द्र की रात की फजीलत। अब जो है वहां जमाना की जिक्र यहाँ होता है, तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। फरिश्ते नाजिल होते हैं इमाम जमाना पे, नाजिल होते हैं रूह, नाजिल होते हैं तमाम उमूर लेकर नाजिल होते हैं कि अब ये जो साल शुरू हो रहा है किसको क्या नेमत मिलनी है, किसको औलाद मिलना है, किसको इल्म मिलना है, किसी करामत मिलनी है, फजीलत मिलनी है, ये सारे उमूर लेकर फरिश्ते इमाम जमाना पे नाजिल होते हैं। यानी जो भी नेमत हमें मिल रही है इमाम पाक के सदके में मिल रही है। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि हम इस काबिल खुद को बनाए, अभी से तैयारी करें कि मौला की जियारत हो सके। लैलतुल कद्र जो है, लैला यानी रात, कद्र की रात जो है ये लैलतुल कब्र के लिए। बाज लोग अरबईन निकालते हैं कि उन्हें उनकी कब्र का पता चलेगा, उनकी कब्र में बहेश का बाग है या उसमें जहन्नुम का गड़ा है। यानी दो ही चीजें हैं, या इंसान को बहेश का बाग मिलना है या जहन्नुम का गड़ा है। तो इसलिए लोग अरबईन निकालते कि बर्दा की आँख खुल जाए, बस उसमें ज्यादातर जो जिक्र होता है सजदे में ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन अंत अरहमुर राहिमीन, तो बरज़खी आँख खुल जाए। इंसान लैलतुल कद्र लैलतुल कब्र के लिए है कि लैलतुल कद्र उसकी कब्र दिखाई जाए, बरज़ख दिखाई जाए कि मैंने क्या किया है जिंदगी में। जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। मरने के बाद अगर पता चले तो क्या फायदा होगा, वापस नहीं आ सकते हम इस दुनिया में। इस दुनिया की राहत के लिए हम कितनी कोशिशें करते हैं, मगर वो जिंदगी जो करोड़ों अरबों खरबों सालों से ज्यादा है उसके लिए हम गाफिल हैं। ये जिंदगी का पता ही नहीं है, शक में है कि कल मौत आ जाए। लिहाजा लैलतुल कद्र लैलतुल कब्र के लिए, वो लैलतुल कद्र को हस हिस करने के लिए, उसकी तमाम नेमतों को हासिल करने के लिए तैयारी अभी से करनी है, ताकि अल्लाह पाक हमें अपने कब्र दिखा दे या इमाम ज़माना अलैहि सलातो वसलाम की ज़ियारत करा दे, तो भी पता चल जाएगा। एक ही मकसद है कि मौला मेरी कब्र कैसी होगी। तो ये अजीम शान मकासिब हैं कि अल्लाह पाक इंशाअल्लाह हमें कामयाबी अता फरमाए। ये माजरत के साथ आज का प्रोग्राम बहुत डिस्टर्ब रहा, इसकी वजह मैंने अर्ज किया कि यहाँ पर कभी ये ब्लॉक कर देते हैं, और पहले भी अर्ज किया था अगर स्काइप पे रखा जाए तो स्काइप पे ये प्रॉब्लम नहीं रहती, मगर जूम कभी चलता है कभी नहीं चलता। तो अगर आप लोगों के सवालात हैं तो इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत में हैं, सवालात कर सकते हैं आप, वक्त कम है, दो तीन सवालात के लिए हाजिर हैं आपकी खिदमत में।
जो लोग सवाल करना चाहते हैं वो हैंड रेस कर। जी राना जिया।
अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब।
वालेकुम सलाम।
मौलाना साहब, बेहतरीन जिक्र क्या है, जो ऐसा जिक्र जो हमारे दिनों दुनिया के लिए भी अच्छा हो और आखिर के अमाल में भी। आयमाए तालीन अलैहिस्सलाम ने बेहतरीन जिक्र क्या हमें तालीम फरमाया है वो बता दीजिएगा, और
हाँ
स्पेशली
बस
जब रमजान के।
बहुत बहुत अच्छा सवाल। देखिए जिस तरह अल्लाह पाक ने कितने मुख्तलिफ मेवे खल किए हैं, सब्जियां किए हैं, खाने पीने की नेमतें जो जिस्म के लिए अलग अलग हैं, गिजाएं तो रूह के लिए भी बहुत सारी गिजाएं हैं, बहुत सारी गिजाएं हैं। मसलन दुआए कुमैल है, दुआए जोशन कबीर है, दुआए इफ्तिताह है, दुआए अरफा है, दुआए हमजा सुमाली, पूरी मफाती भरी हुई है अजकार के साथ। मसलन ये जो एक एक आयत है दुआए जोशन कबीर, सिर्फ शब कदर के लिए नहीं है। दुआ जोशन कबीर जो है ना ये पूरे साल के लिए है। दुआ जोशन कबीर में जो हम पढ़ते हैं अल्लाह के 1,000 नाम है। अब उन नामों में से आप कोई भी नाम चुन लें, अलबत्ता उनकी मानी है, हर एक का अपना अपना काम है। चार नाम आप सुन लें और उसका जिक्र चार नाम मिला के करेंगे तो खुदावंद आलम ऐसी नेमतें देता है कि हम सोच नहीं सकते। अब आपका सवाल क्या है कि सबसे अच्छा जिक्र, सबसे अच्छा जिक्र वो है इंसान के लिए जिसमें दिल में कल्ब में अंदर में हमें लज्जत मिले, और उस लज्जत के साथ क्या हो कि हमें ये एहसास हो हम खुदा के हुजूर में है। अब मसलन मुमकिन है कि एक छोटे जिक्र से यह हालत पैदा हो जाए, अस्तग़फिरुल्लाह फी जलाले, या खुदा तेरे जलाल के सामने मैं तौबा करता हूँ, मिन कुल्ल ज़ुनूब वल आसाब, सारे गुनाहों से सारे खताओं से। यानी इसी तरह से जो भी जिक्र जो है वो आपको ये हालत दे ताकि आप लज्जत मिले, दिल की लज्जत, और ये कैफियत हो कि मैं खुदा की दरबार में, या हय्यू या कय्यूम, कि ये इस्मे आजम है, कहते हैं अल्लाह ला इलाहा इल्लहू अल हय्युल कय्यूम, ये जो आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं जहाँ अल्लाह का लफ्ज आ जाए, हुआ आ जाए, हय्यू कय्यूम आ जाए, चार ना मिल जाए तो इसमें आदम बन जाते हैं। बेरहमत का अस्तगीस हो, तेरी रहमत से मदद चाहता हूँ। तो आप जितने अल्लाह के अजकार हैं उनको आप ट्राई करें कि किस जिक्र से आपको लज्जत ज्यादा मिलती है। हर इंसान का मिजाज, तबीयत, दिल की कैफियत, ईमान की कैफियत, ईमान का लेवल अलग है। लिहाजा आप ये खुद अजगार चुने कि किस जिक्र से मुझे ज्यादा मजा मिलता है, और कैफियत यह है कि मुझे ज्यादा अल्लाह के नजदीक और ज्यादा अल्लाह की मोहब्बत। मसलन बहुत सारे जिक्र, या खैर हबीब व महबूब, ए खुदा तू सबसे बेहतरीन महबूब है, सबसे बेहतरीन दोस्त है। दुनिया वाले बेवफाई कर सकते हैं, खुदा मैं बेवफाई नहीं करता, सबसे ज्यादा वफा करता हूँ। या खैर हबीब और महबूब। अब ये सारी अजकारियां सलावात खुद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद, या खुद ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह को मिला के पढ़ना, हजारों जिक्र है। हर इंसान का ईमान, उसकी कैफियत, उसका मिजाज अलग अलग है। लिहाजा हमें जरूर अपनी जिंदगी में एक जिक्र ऐसा लेना है जो जिक्र दायमी हो, हमेशा वो हम उसमें मशगूल रहें, जो हमें ये हालत पैदा करें कि दिल में लज्जत हो और खुद को हम खुदा के हुजूर में समझें। जी बिस्मिल्लाह। दूसरा सवाल।
अस्सलाम वालेकुम आका साहब।
वालेकुम
मेरे
सलाम।
3 सवाल हैं, मैं आपसे जल्दी जल्दी पूछूंगी। पहला, जो आपने फरमाया कि 20 शाबान को हम अरबईन ले सकते हैं, खवातीन जो है वो अपने अयाम मखसूसा के अंदर, क्योंकि आपने कुछ शर्त रखी थी कि नमाज के बाद, इशा के बाद 202 दफा जो आपने आयत बताई थी उसको हम किस तरह से अंजाम दें ताकि तमाम जो है वो उसकी बरकत से हम भी मुस्तफीद हो सके। और दूसरा ये कि इसके नतीजे में आपने कहा कि परवरदिगार आलम जब हमें अपनी कब्र दिखाएगा, बरजख की आंख जब हमारे लिए खुल जाएगी, तो इसका सोच के ही जो है वो दिल में खौफ आता है कि अपने दिल में हम वो ताकत कहाँ से लाए कि हम अपनी गैब की जो है वो हमें मालूमात हासिल हो सके और हमारे दिल में इतनी बर्दाश्त, इतनी कुवत हो कि उसको हम सह जाए वो चीजें जब हम दिखें। और तीसरा सवाल मेरा ये कि आगा साहब, आप साहिब औलाद होने के लिए भी प्लीज अगर आपके जहन में कोई अमल है तो मुझे वो भी बताइए, क्योंकि मेरे आयतुल्लाह शेख बहाई का जो उनका सूरह रात की जो आयत है उसके बारे में मुझे ये समझ नहीं आती कि वो कहते हैं आयत को खोल खोल के लिखें, जहाँ पे शब्द आता है वहां पे उस लफ्ज को 2 दफा लिखना है, सिर्फ अल्लाह का जो नाम है लफ्ज जलाला को 2 दफा खोल के लिखना है। अगर आपसे मुमकिन हो सके तो इसके बारे में भी आप रोशनी डालिएगा। शुक्रिया बहुत बहुत जवाब देने के लिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहला जो सवाल है कि ख्वातीन में जहाँ पीरियड होता है तो वो क्योंकि खुदाई चीज है तो कोई भी माने नहीं है, सिर्फ उसमें वो आयतें जो सजदे वाली हैं वो नहीं पढ़ सकते, और वहाँ जो सजदा है वो इशारे से वो लोग कर सकते हैं, इशारे के साथ सजदा उनका वही हैसियत रखता है। ला इलाहा इल्लल्लाह सुभानक, ये एक मसला हो गया। दूसरा मसला जो है वो हो गया औलाद का। औलाद के लिए बहुत सारे नुस्खे हैं जो अहले बैत ने बतलाए हैं, जो बहुत आसान है, जिसका हमने तजुर्बा भी किया है। मियाँ बीवी दोनों जो है अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी वअतूबु इलैह वो पढ़ें 7,000 मरतबा, वजू से रहें चलते फिरते, वो एक जगह बैठने की कैद नहीं है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी वअतूबु इलैह 7,000, तो एक साल में अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हसन सलाम का नुस्खा है। बहुत सारों को हमने मजलिस में पढ़ा, दूसरे साल बच्चा ले आए, आजमाया हुआ नुस्खा है। और दवाएं भी जो अहले बैत की हैं, तिब्बे अहले बैत में, उसमें भी बहुत सारे लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि आपको कभी बच्चा नहीं हो सकेगा, उसमें जो 3 दवाएं हम देते हैं, अगर मर्द में कोई मुश्किल है, जजर उसका नाम है, एक का कवर नाम है, सभी अहले बैत की दवाएं हैं, और मुरक्का विचार। अगर खवातीन में कोई मुश्किल है तो उसके लिए भी दवाएं, 2-3 दवाएं होती हैं जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह खवातीन को भी मुश्किल दूर हो जाती है। अब जो तीसरा सवाल था आपका कि अरबईन जो है किस तरह से निकालें, अरबईन का दोबारा रिपीट कर देंगे मैं जरा, तीसरा सवाल आपका जो था सिस्टर।
जी अस्सलाम वालेकुम आका साहब, मैंने पूछा था कि आपने जो बताया था कि अरबईन निकालने के बाद परवरदिगार हमें जो गैब की
जी
चीजें
सब
दिखाएगा
जी
या
हाँ जी हाँ जी हाँ
कहाँ
हमने
से लाए
समझ
वो
गया।
कहाँ से
जी
लाए
जी
उसको डिस्कस।
हाँ हाँ देखिए, ये डरने की बात नहीं है। मैं एक सफर हमने करना है, एक दिन हमें हर एक को कब्र में जाना है। तो जैसे हम कहीं जाते हैं किसी मुल्क में, तो उसकी मालूमात लेते हैं भाई कहाँ रहना है कैसा है। तो इसी तरह से ये एक ऐसा सफर है जिससे हम भाग नहीं सकते। वला युमकिनुल फिरार मिन हुकूमत, जो मौला अली फरमाते हैं, खुदा की हुकूमत से कोई भाग नहीं। कब्र में हर एक को उतरना है, और एक मरतबा इंसान जो है बगैर तैयारी के कब्र में जाता है, वो फिर कब्र उसकी बहुत खौफनाक है, भयानक है। एक मरतबा इंसान जो है तैयारी के साथ जाता है, और जो भी मवाने हैं, अगर कब्र में हमारे एक गुनाहों से किसी का हक हमने खाया है, उसकी वजह से कोई अजाब है, तो आसानी से हम उसका हक अदा कर सकते हैं। मरने के बाद तो नहीं होता ना। जैसे मैंने अर्ज किया, कुछ खुदा वंदे आलम की तरफ से लोगों पे रहम करम होता है। तो एक जो आलिम दीन थे, वो दूसरे आलिम को नजर आए मरने के बाद कि मैं हूं तो बरज़ख़ी जन्नत में, मगर ये अजाब है। क्या उसने दिखाया कि एक बड़ा सांप है जो उसके पाँव के करीब है और उसे काटता है, तो बहुत तकलीफ होती है। तो कहा तुम तो जन्नत में हो, पर ये जन्नत में सांप कहाँ? ये बरज़ख़ी जन्नत है, वो जन्नत नहीं है, ये मेरा अपना गुनाह है। हाँ, वो क्या गुनाह है कि मैंने एक मोची से जूता बनवाया था, उसका पैसा नहीं दिया और वसीयत में भी नहीं लिखा। तो आलिम उठे, जाके पूछा मोची से, कहा बिल्कुल सही है, आलिम दीन थे, मुझे यकीन था कि वो पैसे नहीं खाएगा। मगर उसके बेटे से जाके पूछा, भाई मेरा हक है, कोई आपके बाप ने वसीयत की? कहा कुछ नहीं। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि एक ऐसा आलिम दीन था। तो अब देखिए, अगर इंसान को पता चल जाए तो एक मामूली चीज है, 100 रुपया 200 रुपया, अब इसके लिए हुक्म है कि रद्दे मजालिम की रकम एक मरतबा निकाल दो, कि गलती से अगर हमने किसी का माल खाया है तो मुमकिन है रद्दे मजालिम हमने पूरा ना निकाला हो। तो खबर अगर पहले दिखा दी जाए, अहले बैत ने ये अहमान इसीलिए बताए हैं, बहुत सारे अरबईन हैं, जिससे आपको बरज़ख दिखाई जाएगी, कि हम कब्र में उतरने से पहले, अगर वही हदीस में भी है कि वो खुश नसीब है वो जो कब्र में उतरने से पहले कब्र को तैयार कर ले, आमादा कर ले, खुदा से मुलाकात से पहले खुदा को राजी कर ले, फरिश्तों के हिसाब किताब से खुद अपना हिसाब किताब कर ले। तो इसमें डरने की बात नहीं है, आखिर कब्र में उतरना है। हाँ, अलबत्ता कुछ ऐसे अरबईन होते हैं जो हर इंसान नहीं कर सकता है। बाज लोग कमजोर दिल होते हैं, उनको कभी इजाजत नहीं होती है कि आप ये अरबईन निकाले। मसलन तैल अर्ज, खुद एक कुरान की आयत है, कुत्ते अतबेहल अर्ज, के कुछ अरबईन है कि आप एक लम्हे में जहां पहुंचना चाहें पहुंच सकते हैं। अब ये अरबईन हर एक इंसान नहीं निकाल सकता है। मसलन एक शख्स था, हालांकि वो आलिम दीन भी था, मगर दिल उनका कमजोर था। उन्होंने वो दायरे में वो पूरा पढ़ना पड़ता है, हिस्स में हिसार, और उन्होंने उसके बाद जो है वो गैबी मखलूकात उन्हें डराती हैं, इसका ईमान देखती है। तो वो बेचारे कमजोर दिल थे, डर गए, तो उन्हें किसी मखलूक ने आके, अब कौन मखलूक थी अलग बहस है, सर से पकड़ के उठा के किसी सहरा में फेंक दिए। तो इस लिहाज से हर इंसान बाद अरबईन नहीं निकाल सकता है, क्योंकि जिसका दिल कमजोर हो। मगर ये अरबईन अपना के भाई काबर इंसान देखें, ये तो कबर में हर एक ने जाना है, लिहाजा अगर डरपोक इंसान है तो भी उसे निकाल के अपनी कब्र की सफाई करनी है कि भाई कोई सांप बिच्छू कोई अजाब तो मैंने नहीं भेजा है। जब देखेंगे नहीं तो हम गाफिल रहेंगे, और जहन्नम में जाने के सबब सबसे बड़ा गफलत है। और जो वाबुद रब्बक हत्ता यातिक, हम नमाज पढ़ते रहे मगर हमें यकीन की मंजिल नहीं है, तो शैतान फिर हमें और गुमराह कर सकता है। तो एक तो हमें अपने आखिरी सफर के बारे में पता होगा, और फिर हमें मकाम यकीन मिलेगा, और फिर हम गुनाहों से बचेंगे। सबसे बड़ा फायदा यह है, जब तक हम बिल्कुल आखिरत से बेखबर हैं तो कभी भी शैतान शक करके हमारे दीन ईमान को कहता है कोई बरदक नहीं, कोई कयामत नहीं। जो अक्सर लोग जालिम लोग करते हैं वो यही है कि अमलन उनका ईमान बरजख पे नहीं होता है, कब्र पे नहीं, बस यही जिंदगी है, बस मजे उड़ा लो, हराम खा लो, जुल्म कर लो। तो यजीद सिफत लोग, ये शिमर सिफत लोग, इसी तरह। तो वो ही खतरा जो है हम सब के लिए है कि अगर हम मकाम यकीन तक नहीं पहुंचे तो हमारा ईमान डगमगा रहा है। ایک مرتبہ اگر آپ نے عربی نکالا, اپنی روح کو دیکھ لیا, اب ہزار شیطان وسوسہ کرنے, روح ہے نہیں بس صرف بدن ہے, آپ نے خود دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے, تو اب وہ شیطان آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا. آپ نے برزخ دیکھ لی, مثلا ایسی بہت حقائق ہیں, جیسے اس یہی جو واقعہ کہ بھائی موچی سے جا کے پوچھا تو موچی, اب وہ یہ خواب ہے, مگر خواب کے ذریعے سے بھی خدا مقام یقین طرف لے جاتا ہے. یہ بہت سارے مرحومین جو ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی ہم پھنسے ہوئے ہیں یہاں برزخ میں, ہماری مدد کرو, فلاں کا قرضہ ہم نے نہیں دیا, جا کے ہم پوچھتے ہیں تو بالکل وہی ہوتا ہے. خود ایسے مثلا ہمارے ساتھ بھی سے واقعات ہوئے ہیں کچھ رشتے داروں کے, تو اس سے کیا ہوتا ہے انسان کو یقین بننے ملتی ہے. تو یہاں یہ شیطان ڈراتا ہے کہ ایسے عبادت, کیونکہ پھر شیطان کا راستہ بند ہو جاتا ہے, تو یہ ڈر اور خوف شیطان کا. ہاں البتہ جیسے میں نے عرض کیا, جو بڑے بڑے عربائن ہیں وہ ہر انسان نہیں نکال سکتا ہے, اس کے لیے بہت ہی مضبوط قلب ہونا چاہیے, بہت مضبوط ایمان ہونا چاہیے. یعنی ابھی ہم چھوٹے کرونا سے ڈرتے ہیں جو نظر نہیں آتا ہے, تو پھر یہ بڑے بڑے جو عربین ہیں اس میں بہت شجاعت ترین انسان جو ہے نکال سکتا ہے. جیسے میں نے تیل عرض کی ایک مثال دی, باقی یہ اب یہ ہماری جو ہے اصل یہ حقیقت ہے, یہ ہمارا ایک سفر ہے, اور اس سے ہم فرار نہیں کر سکتے, موت سے ہم بھاگ نہیں سکتے, قبر سے ہم بھاگ نہیں سکتے, لہٰذا اس کا دیکھنا ضروری ہے اور ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے. دماغ سے دعا, دعا میں یاد رکھے گا. خدا حافظ.
شکریہ.